आइए इस पावन बेला में हम सभी सामूहिक रूप से पूरे देश में 500 से अधिक स्थानों पर हम सभी परिजन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग घरों में, लेकिन ये पूरा का पूरा देश, आप 2 मिनट नेत्र बंद करके देखिए कि ये पूरा का पूरा जो भवन खड़ा हो रहा है ये शांति कुंज है। पूरा का पूरा भारत में उत्तर से लेके दक्षिण पूर्व से लेके पश्चिम तक शांति कुंज की दिव्य चेतना दिव्य धारा बह रही है। इसको नमस्कार करते हुए गुरु सत्ता का भावरावन करेंगे। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वराय गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरी ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानां आयुः प्राणां प्रजां पश्यं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम् मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणी नमः। सहस्रकोटि युगधारिणी नमः। सभी भाइयों और सभी बहनों से विनम्र निवेदन है कि कैसी भी परिस्थिति हो, आप लोग जो लोग अब संकल्प लेने वाले हैं वे सभी आलती पालती मारकर बैठ जाएं, कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोदी में रख लें, उठते हुए सरिता देवता सूर्य देवता का ध्यान करें। परम पूज गुरुदेव वंदनीय माता जी माँ गायत्री सबका हमने आवाहन किया वो सामने है। अब हम उस सरिता देवता को वरण करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाए, हमें श्रेष्ठ तेजस्वी बनाए, हम दुख और पाप के नाश करने वाले बने, हम सुख स्वरूप बने, हम देव स्वरूप बने। इन्हीं भावों से हम प्रार्थना करते हैं। ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
40 दिवसीय साधना में भाग लेने वाले सभी बहन भाइयों को नमस्कार, मंगल कामना। साधना क्रम अच्छा चल रहा है, बड़ा उत्साहवर्धक है। आशा से अधिक लोग भाग ले रहे हैं और पूरी तत्परता से ले रहे हैं। इसमें जो नियम बताए गए हैं उसमें आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, उसमें एक बात कही है कि 40 दिन में एक दिन अपनी सुविधा से पूरे दिन का मौन रखें। मौन का मतलब ये नहीं है कि हमें वाणी नहीं चलाना है। मौन जो होता है वो होता है मानसिक, वाणी का मौन नहीं है। वाणी का तब तो स्वाध्याय होता है, ये सत्संग होता है। मौन मानसिक तप है, मौन हमें अंतर्मुखी होने का मौका मिले, हम अपने भीतर डूबें, इसके लिए ये करते हैं। तो उसके लिए मौन बड़ा सहायक होता है, अंतर्मौन की बात है। तो इसके लिए जब आप मौन रहते हैं, तो इसलिए नहीं कि हमें वाणी का उपयोग नहीं करना है, कोशिश ये करना कि हमारा बाहर मस्तिष्क कम से कम जाए, या तो स्वाध्याय करेंगे या तो आत्मचिंतन करेंगे। और ये जब करते हैं तो अंदर के बहुत से नए नए पर्त खुलते हैं, है ना। ये मानसिक तप कहा है गीता में, कायिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप तीन कहे हैं। तो मानसिक तप में कहा मन प्रसाद सौमित्व मौनम आत्मविनिग्रह, मन की प्रसन्नता, भीतर से आप आनंदित हैं, आत्मन्यवात्मा, बाहर का कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने बहुत दिया हमें और हमारा भगवान है, आनंदित रहो खूब से। मन प्रसाद सौम्यतम, सौम्य, कहीं ना कहीं उत्तेजना ना कोई निराशा किसी बात में ना पड़े, हम अपने कर्तव्य में लगे हैं और हम अपने कर्तव्य को ठीक से कर रहे हैं, हमें देख के हमारा प्रभु प्रसन्न हो रहा है, हम प्रभु को देख के प्रेरणा ले रहे हैं। सौम्यतम मौनम, मौन माने बाहर से अपना संपर्क तोड़ दीजिए समाज से, बस हम अपने कर रहे हैं, प्रभु बोल रहा है हम सुन रहे हैं। जब तक आप बोल रहे हैं तब तक आप सामने वाले की बात सुन ही नहीं सकते, तो हम वाणी से चुप हो जाते हैं लेकिन मन से बोलते ही रहते हैं। और भगवान की वाणी तो मुखर वैखरी वाणी होती नहीं है, वो तो मन की ही वाणी होती है। जब हम मन से चुप हो जाएंगे तो भगवान की वाणी आती है, है ना। अर्जुन ने जब कहा और कह करके वो चुप हो गया, तूष्णीम भव, बैठ गया चुप होकर के, तो कृष्ण ने बोलना शुरू किया, बोलता रहे तो क्या बोले। गुरुदेव ने अपने किन्हीं को कहा था कि अच्छा बेटा तू बाहर विदेश में चला गया है, दिक्कत होती तू मुझसे मानसिक संवाद कर लिया कर, और उन्हें विधि बता दी और वो मानसिक संवाद करने लगे। तो उन्हीं के बड़े भाई ने उनसे कहा कि भाई हमारे बारे पूछ, हम क्यों नहीं कर पाते। तो गुरुदेव का उत्तर ये मिला था कि वो तो अपनी कहता रहता है, मैं कब बोलूँ, मुँह से तो चुप रहते हैं, मन से अपनी बोलते रहते हैं। तो जब आपका मन शांत हो जाता है तो दैवी चेतना फिर आपको आती है, फिर वो प्रेरणा आती है। ये सारे ऋषि ध्यान में इसीलिए जाते हैं, ध्यान में जाते हैं तो अंदर सब शांत हो जाते हैं, तो वेद उपरेयर तरह तरह के वो उतरे, वैज्ञानिक अपने आगे शांत हो जाता, कहीं कुछ नहीं, फिर उसके अंदर से प्रेरणा उभरती है। सारे जो काम हैं, जितने भी नए नए आविष्कार हुए हैं, ये सब गुरुदेव ने कहा हमारी चमत्कारी अंतः चेतना, हमारी अंतः चेतना बड़ी चमत्कारी है, वही संकेत करती है। पेड़ से फल गिरते हुए सबने देखा, किसी की अंतः चेतना ने संकेत नहीं किया। न्यूटन जी ने किया कि देख पेड़ नीचे गिर रहा है, क्या ऊपर भी तो जगह खाली है, हाँ है तो वो सीधे ही गिर रहा है। अब उसने देखा, जब उसका अध्ययन किया तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत मिल गए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बन गए, उसका लाभ था तो, लेकिन हम समझते नहीं थे, लाभ नहीं ले पाते थे, है ना। केटली में भाप बनती ही है, सब जानते हैं, और ढक्कन फटफट करता है, लेकिन किसी की अंतः चेतना ने नहीं बोला कि देखो ये वजन उठा सकती है। जेम्स वाट की अंतः चेतना, ये तो वजन उठा रही, और वजन रखा वो भी उठ गया, और रखा और उसकी ताकत समझ में आई, उसका प्रयोग किया तो स्टीम इंजन बन गया, है ना। वो किसी चीज़ को रगड़ा तो उसमें छोटे छोटे तिनके जुड़ने लगे, अरे कोई इसमें कोई शक्ति है, रगड़ने देखा अध्ययन किया उसमें बिजली बन गई। तो ये क्या हुआ है, ये अंतः चेतना बड़ी चमत्कारी है। हम अंतः चेतना के लिए खाली नहीं होते ना भाई। तो मौन का मतलब है कि अंतः की वाणी के लिए, आत्मा परमात्मा के संकेतों के लिए शांत हो जाओ और उसके लिए रिसेप्टिव हो जाओ, ग्रहणशील हो जाओ कि अब हमें इसी को कर रहे, इसका ना मतलब मौन है। तो अगर ऐसे मौन की साधना आप अभ्यास करें तो अभी भी और आगे भी, तो हम चाहते हैं कि साधना अनुष्ठान में जो वसंत काल में हो रहा है, वसंत काल में कुछ नई नई चीज़ें बनती हैं ना, तो हमारी भी साधना की नई नई वृत्तियाँ बने। जहाँ तक अभी हमारी अंतः चेतना नहीं पहुँच पाई वहाँ तक जाए, तो वो करना चाहती तो उसके साथ तो बैठे हैं, हम तो दुनिया को ही सब कुछ मान लिया जो कि नश्वर है, उसकी अपेक्षा हमारी अंतः चेतना ज़्यादा शाश्वत है, तो हम उसकी तरफ क्यों नहीं जाते। तो इसका है, ये सामान्य बात नहीं है, इसको लोग करेंगे जब भी होता है। इसीलिए बड़े 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 संत सिद्ध लोग बीच बीच मौन में चले जाते हैं, गुरुदेव सूक्ष्मीकरण में चले गए थे इतने से काय के लिए, तो वह गए तो सूक्ष्मीकरण में वो इतने बड़े बड़े काम करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय काम करने लगे वो, क्यों, चेतना ने कहा हम सब करने को तैयार हैं, उसे मौका दिया, हो गया। तो हम भी शायद कुछ ऐसी रास्ता पकड़ लें कि जो काम अभी आवश्यक हैं हम नहीं कर पा रहे हैं, शायद गुरु की चेतना आ जाए, हमारी अंतर चेतना बताए, हम तो तैयार बैठे हैं, तो मौका दो गुरु शक्ति देगा, शायद ऐसा कुछ हो जाए। ऐसा कुछ है तो इस भाव से मौन की साधना करना है, तो सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। आप मौन का मतलब सिर्फ वाणी से किसी तरह चुप रह जाना नहीं है, हमारे अंदर की हलचलें समाप्त हो जाएं और हम भीतर वाले की सुनने के लिए, भीतर वाले से मिलने के लिए खाली हो जाएं और ग्रहणशील हो जाएं, ऐसा भाव बनाएंगे, तो ऐसा प्रयास आप भी करिए, गुरु सत्ता आपकी मदद करेगी। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। ओम शांति।
अपने आप को हम खाली कर सकें, अपने भीतर वाले से हम मिल सकें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारे परम आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय बाबूजी ने हम सभी को ये संदेश दिया। ये संदेश उनका उन्होंने 40 दिवसीय वालों को जरूर दिया, लेकिन ये मौन के महत्व को हम सबके लिए प्रतिपादित करता है। आइए हम सभी को क्या संदेश दिया उसे सुने।
जो लोग भाई बहन ऑनलाइन मौन साधना के क्रम में जुड़ रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत मंगल कामना, नमस्कार। ये बहुत अच्छा क्रम चला है और इसको करते समय थोड़ा सा दिमाग साफ रखें कि ये कोई बहुत कठोर साधना नहीं है, ये विशेष साधना तो है लेकिन कठोर साधना नहीं है। इसमें मौन इसलिए करते हैं कि वाणी से जो ऊर्जा निकलती रहती है बहुत ज़्यादा निकल जाती है, उस ऊर्जा को बचा करके हम उसे अपने अपने चिंतन में लगाएं, अपने संयम में लगाएं। तो इसके लिए दो तीन बातें हैं जो गुरुदेव के तीन प्रवचन होने वाले, उनको ध्यान से सुनिए कि एक उसका प्रायश्चित्य वाला भाव होता है। प्रायश्चित काय का जाने अनजाने हमसे कुछ होता रहता है, उस समय वो ठीक भी हो सकता है लेकिन कालांतर से वो चीज़ बदलने लगती है। अब हमारी आदत है कि हमारी आदत ऐसा हम कैसे छोड़ें, ये एक बड़ी भारी बाधा करके आ जाती है। तो हमारी जो आदतें पड़ गई हैं उनको शोधन करना, हमसे जो गलती हुई है उसको समझना, उसकी स्वीकारोक्ति, उसको ठीक करने का संकल्प और उससे जो हानि हुई है उसकी पूर्ति, इष्टापूर्ति, तीन होते हैं, गुरुदेव समझाएंगे इसको करना चाहिए। कपड़े की अगर रंगाई करना है तो उसको पहले धुलाई करनी पड़ती है। अगर अध्यात्म का रंग ठीक से चढ़ाना है तो अपने कपड़े की मलिनता निकालना पड़ेगी, गंदे कपड़े पर रंग चढ़ेगा नहीं। तो प्रायश्चित विधान में अपने मन को, अपने बारी कमियों को देख करके उनसे भगवान से, और तो नहीं थे भगवान ये हमारी कमजोरियां दूर हों, हम इसमें इतना प्रयास करेंगे, आप अपनी शक्ति जोड़ दो, गुरुदेव अपनी शक्ति जोड़ दो बस। और एक बात ये ध्यान रखना, उसके बाद फिर उनका कहते हैं प्रायश्चित के बाद एक तप का आता है। तप क्या है? ऊंचे उद्देश्य के लिए जब हम कुछ करते हैं उसमें अगर कठिनाई होती तो उसे प्रसन्नता से सह लें। खिलाड़ी खेल के मैदान में उतरता है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है लेकिन वो प्रसन्नता से करता है तो खिलाड़ी बन जाता है, उसका दमखम, उसका स्टेमिना बढ़ जाता है, ऊंचा खिलाड़ी बन जाता है। संगीतक घंटों संगीत साधना करते हैं, परेशानी होती है लेकिन वो आनंद ले लेते हैं। तो जो भी आपको कहीं आगे बढ़ना है तो उस क्रम में आपको कुछ शारीरिक मानसिक रूप से दबाव झेलना पड़ेगा और बिना दबाव झेले कोई चीज़ मजबूत नहीं बनती। बच्चे के अगर मांसपेशियों पर, हड्डियों पर दबाव नहीं पड़ेगा तो वो कमजोर बन जाएंगे, दबाव पड़ेगा तो ही मजबूत बनती हैं। बहुत अच्छा खिला दोगे तो मजबूत बनेंगी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। गरीब लोग मेहनत से थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं लेकिन उनकी हड्डी मजबूत होती है, अमीरों की कमज़ोर होती है, क्योंकि उस पर दबाव नहीं पड़ा। तो तप का मतलब है कि अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए जो वृत्तियां होने चाहिए, अगर वो कठिनाई भी है तो उसको मन से संकल्प करके ये तो हमें करना ही है, इतना तो हमें दौड़ना ही है, इतना अभ्यास तो हमें करना ही है, ऐसे भाव से करते हैं, ये तप होते हैं। और उसके साथ स्वाध्याय का, स्वाध्याय भी एक तप ही है, स्वाध्याय को भी तप कहते हैं। स्वाध्याय से कहते एक मानसिक वो है, हमने मानसिकता गलत थी उसको हटाएंगे और अच्छी चीज़ों को उसमें डालेंगे, उस स्वाध्याय से संबंध है, महापुरुषों के वाक्यों से, उनकी जीवनियों से। तो ये तीनों मिलते हैं तो जीवन का बहुत अच्छा शोधन होता है। फिर उसके साथ ये प्रक्रिया है, प्राणायाम है और ध्यान है, ये सब फिर उसमें सहयोगी बनती हैं। तो इसमें कोई ये ना सोचे कि सारी 25 साधना हम करें कनिष्ठ हो जाएगा, नहीं। गुरुदेव ने अपने उसमें लिखा है कि मैंने जो साधनाएं बताई हैं उसका कोई विपरीत प्रभाव तो होगा ही नहीं, मान के चलो। उसके दो कारण हैं, उन्हें अनुभूत किया वो बातें, वो चीजें नहीं उठाई हैं जिसमें होता है विपरीत। जो हठ मार्गी तंत्र साधनाएं होती उसमें होता है कि हीन शक्तियां होती हैं, अगर उनका उपयोग नहीं हुआ तो उल्टी पड़ जाती है। लेकिन अगर किसी सज्जन ने कोई उपदेश दे रहा है, आप बैठे सुन के सुना तो ठीक है, उठ के चले गए तो वो कुछ प्रतिक्रिया नहीं करता है। सुनोगे तो लाभ होगा, नहीं सुनोगे तो कोई अपना जो है सब रहोगे, लेकिन कोई वो नाराजी नहीं व्यक्त करने वाला है। ऐसा हमारे गुरुदेव की बताई साधना है, सब सौम्य साधना है, किसी अनिष्ट के भाव तो रखने ही चाहिए। और दूसरी बात है, गुरुदेव को साक्षी करके कर रहे हो, गुरुदेव को साक्षी कर रहे हो तो उनकी चेतना मदद करती है, सबका अनुभव है। तो ऐसे संबंध में जब संकल्प कराए जाते हैं तो यह शांति इनकी गुरुदेव की चेतना से संबंध जुड़ जाता है। तो किसी को भी ये भय नहीं करना चाहिए कि हमारा संरक्षण कौन करेगा, गुरुदेव करेंगे, और लोग अनुभव भी करते हैं वैसा करने का। तो बड़े प्रेम से साधना को करें और आहार संयम के लिए अपने ढंग से कर ले। कोई कठोर कर बनाना हो, कठोर सहज बनाना हो, सहज बीच में पर्व आते हैं कि ये करें फलाना आ गया, अपना कोई व्रत करते हैं तो उसको करते रहो, और नहीं करते हो करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो है आहार का संयम दो दृष्टियों से, कि जीव का भी संयम हो जाता है और सात्विक आहार है तो उसके हमारे संस्कार भी अच्छे बनते हैं। आर्थिक सुपाच्य और सात्विक भी हो ये भी बात अच्छी है ना। और उसके संस्कार भाग से मन बनता है आदमी का, स्थूल भाग से शरीर के कोष बनते हैं जो टूटते रहते हैं, और संस्कार भाग से अच्छे संस्कार का हो तो समय आप उस भाव से कर रहे हैं। हर चीज प्रसाद के भाव से लीजिए तो उसका संस्कार अच्छा हो जाएगा। और मौन रखने में सबसे बड़ी बात है कि आदमी अंतर्मुखी हो जाता है, अपने अंदर झांकता है। जितना दुनिया में जो भी आपको विकास दिख रहा है वो सब भीतर से निकला है, चाहे वो कला के माध्यम से कलाएं निकली हों, संगीत निकला हो, चाहे वैज्ञानिकों के माध्यम से नए नए इनोवेशंस हुए हों, नई नई चीज़ें खोजी गई, वो सब अंदर से ही निकली हैं। और ये अंदर की जो विशेषता है वो भी अंदर से ही निकली है। कबीर जैसे लोग जिनको विचारों को ना हिंदू ना मुसलमान, लेकिन वो भीतर गए तो उनमें वो सब ले आए कि कबीर कबीर साहब हो गए, रैदास रैदास साहब हो गए, है ना, मोहम्मद साहब वहाँ वो भी बिना पढ़े लिखे थे वो हो गए, ईसा मसीह हो गए, राजकुमार बुद्ध भगवान बुद्ध हो गए। ये कहाँ अंदर से ही निकला है। तो कब जो अपने लिए खाली होके बैठोगे, तो अपने लिए खाली होना, उसमें रस लेना अपने भीतर की जाए। तो दोनों बातें होती है कि अपने भीतर जो विकार घुस गए हैं जाने अनजाने उनको निकालना, और जैसे ही वो विकार निकलते हैं तो दृष्टि उन कोषों पर पड़ती है, उन कीमती चीज़ों पर पड़ती है जो भगवान ने हमारे यहाँ बीज रूप में दी, वो विकसित होती है। तो ये सब कम आपके उसमें सब जुड़े हुए हैं, इसमें प्रायश्चित विधान धुलाई, फिर उसमें तप के माध्यम से अपनी गढ़ाई, स्वाध्याय की मांग से अपनी रंगाई, ये सब होकर के व्यक्तित्व को परिष्कृत होता है। बड़े मन से उसमें करिए, संरक्षण गुरुदेव का है, अनुशासन आप जो मानता है उसका संरक्षण अपने आप हो जाता है, प्रकृति का अनुशासन जो मानता है उसका संरक्षण अपने आप हो जाता है, जो प्रकृति का अनुशासन नहीं मानता उसको दिक्कत होती है। तो गुरुदेव की सारी साधना है बड़ी सौम्य है, उन्होंने कहा कोई विपरीत तो होगा नहीं, फिर उनका संरक्षण है। बड़े प्रेम से करिए, सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। ओम शांति।
सभी परिजनों को, साधक भाई बहनों को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय उपाध्याय बाबू जी का आप सभी को आशीर्वचन मिला, मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया कि किस तरीके से हम जो कुछ भी हमारे कषाय कलमश है पहले तो उनको साफ कर दें, फिर रंगाई करें, गढ़ाई करें। तो ये बहुत ही सुंदर प्रायश्चित साधना रहेगी सवेरे, फिर तब की बात हम पूरे दिन ही कर रहे हैं, स्वाध्याय रहेगा, सत्संग हमारा हो रहा है, और स्वाध्याय ये सारी चीजें मिल करके हम अपने अंतःकरण को परिष्कृत करेंगे। प्राणायाम इत्यादि बहिरंग साधनाएं भी रहेंगी, प्राणायाम करेंगे। आसन आप लोग स्वयं कर लेंगे, टाइम टेबल आप सभी को मिल गया होगा। एक बार मैं टाइम टेबल का आप लोगों को थोड़ा सा एक अवलोकन करा देती हूँ। जागरण सवेरे 4 बजे आप लोग कनेक्ट कर लेंगे, तो जागरण आप पहले कर लेंगे 4 बजे तक, 4 से 5 मिनट पहले ही आप कनेक्ट कर लेंगे, इसी लिंक से कनेक्ट करना है। जागरण के पश्चात आपको आत्मबोध की साधना और प्रार्थना, ये 15-20 मिनट का चलेगा। आप इस समय उषापान करें, मतलब पानी पीते रहें, ध्यान कर लें, थोड़े से हल्के पैर हाथ घुमाते रहें, सूक्ष्म व्यायाम कर लें और प्रार्थना हो जाएगी। प्रार्थना के पश्चात आप स्नान, ब्रश, जो भी आपका रहता है नित्य कर्म, उसको कर लें। कितने बजे तक करना है ये सारा काम? 5 बजे तक। ताड़ासन, व्यायाम, जो भी आपकी हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज हैं, ये सारा क्रम आप 5 बजे तक कर लें। और 5 बजे फिर एक म्यूजिक बजेगा, उस म्यूजिक को सुनते ही आप समझ जाइएगा कि आप 5 बज गए और आपको शिथिलीकरण कराया जाएगा। शिथिलीकरण आराम से लेटना है पत्ते पर शव की भांति, उसमें निर्देश मिलेंगे श्रद्धेय डॉक्टर साहब के, उन निर्देशों को ध्यान से सुनेंगे। निर्देश एक बार ही होते हैं, दोबारा रिपीट नहीं होते हैं, एक ही बार सजगता से सुन लीजिएगा। तो ये आराम से एकदम शवासन जैसी स्थिति में रिलैक्स लेटना है। उसके बाद मतलब 10-15 मिनट का ये सेशन चलेगा। इसके बाद आपको अपने अंग अवयवों से, बहुत से परिजनों को अपने अंग अवयवों से का मतलब नहीं पता, तो उन्हें बता दें। जो लोग हम सब नैष्ठिक कार्यकर्ता, परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य, और जो लोग नहीं भी हैं, अगर हो सकता है आप लोगों में से किसी ने ये सत्र करने का ऐसे ही प्रयोग के तौर पे अगर संकल्प लेने आए हैं, तो उनके लिए भी, क्योंकि मन में कहीं आपकी इच्छा आई कहां से, परम पूज्य गुरुदेव ने अपने अंग यानी स्वयं को वह व्यक्ति कहा है जो हम सब की मिली जुली, आप हम सब 500-700-600 लोग जो अभी इस समय कनेक्ट हुए हैं मोबाइल के माध्यम से। ये भारत की स्थिति, हो सकता है यूके वाले भी सुन रहे हो, वहां पे 2-4 लोग ही हैं जो करने वाले साधना, लेकिन वो भी बहुत बड़ी संख्या है, अभी शुरुआत है वहां। भारत में हमारा प्रचार प्रसार ज्यादा है, अभी विदेश में हमने प्रचार प्रसार नहीं किया क्योंकि इस समय अलग हो जाता है, 4 घंटे का अंतर है यूके में, इसके बाद अमेरिका वगैरह में और ज्यादा अंतर है, तो इसलिए अभी वहां हम लोगों ने काम नहीं किया है, करेंगे अगले हफ्ते करेंगे। लेकिन जो परिजन इसमें भाग ले रहे हैं वो ध्यान रखें, अपने अंग अवयव का मतलब है परम पूज्य गुरुदेव उस शक्ति धारा को कह रहे हैं, वो संगठन को कह रहे हैं और स्वयं को कह रहे हैं कि वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो सब आप हम सब मिलजुल करके जो संगठन बनता है उसकी बात कर रहे हैं। तो अंग अवयव बहुत ही शानदार एक ऐसा पत्रक है, एक लेख है जो परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, जिसको अगर हम पढ़ते हैं, रोज पढ़ें, तो हमारी अंतर चेतना बहुत ही ज्यादा विकसित महसूस करती है कि हम उस महान तत्व का एक अंश है। वास्तव में जो अहम ब्रह्मास्मि वाला भाव है, उसमें अयम आत्मा ब्रह्म का जो भाव, ये जो तत्व दर्शन है, ये यहाँ पर एक प्रकार से प्रैक्टिकल हम देख सकते हैं, प्रयोगात्मक रूप में हम देख सकते हैं। तो ये आप लोगों को सुनना है, समझना है कि गुरुदेव अपने नैष्ठिक कार्यकर्ताओं, अपने शिष्यों, अपने परिजनों से क्या अपेक्षा रखते हैं। समय समय पर इसमें पूरा बताया गया है कि हनुमान से भी कम स्तर का हम लोगों को नहीं होना है, हम लोगों से क्या अपेक्षा की गई है, हमारी अग्नि परीक्षा क्या है, काम बनते भी रहेंगे बिगड़ते भी रहेंगे, लेकिन हमारी हमारी चीज, हमारी अग्नि परीक्षा क्या है, हमारी कसौटी क्या है, हमारा गुण कर्म स्वभाव में क्या चीज रहनी चाहिए। आप इसे ध्यान से सुनेंगे, बहुत आपको आनंद मिलेगा, और हो सकेगा तो हम इसकी लिंक यानी टेक्स्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा आता है सत्संकल्प, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सत्संकल्प जो है गायत्री परिवार के युग निर्माण योजना के प्रत्येक साधक को उसको अपने जीवन में उतारना है। ये 18 संकल्प हैं जिसे गुरुदेव कहते हैं बुद्धि के द्वारा परिष्कृत किए हुए संकल्प जो होते हैं, जब बुद्धि द्वारा परिष्कृत कर ले, जो इच्छा होती है हमारी उसको जब क्लीन कर लिया जाए, बुद्धि टेस्ट कर ले, समझ ले कि हाँ ये सही है, उसको सत्संकल्प कहते हैं। तो परिभाषा आती है सत्संकल्प की, बुद्धि द्वारा परिष्कृत इच्छा सत्संकल्प संकल्प कहलाती है, बुद्धि द्वारा परिष्कृत इच्छा संकल्प है, और उसमें वो सात्विक हो सत्संकल्प है। तो ये 18 सत्संकल्प जो है ये हमें व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर एक श्रेष्ठ नागरिक, श्रेष्ठ इंसान और श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनाते हैं। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उनके अनुशासन, उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। ईश्वर क्या है? वो सर्वव्यापी है, वो न्यायकारी है, उसका अनुशासन है। जैसे अभी बाबूजी ने कहा कि जो उसका अनुशासन मानता है तो उसका संरक्षण सदा प्राप्त हो जाता है। तो ये बातें रहेंगी इसमें। हमें क्या करना है, मन को कैसे कुविचारों से बचाना है, इंद्रिय संयम, समय संयम इत्यादि 18 पूरे आएंगे, इसे ध्यान से सुनना होता है। मैं ये इस बार थोड़ा डिटेल में इसलिए बता दें ताकि जो नए परिजन है उनको नहीं समझ में आता तो समझ लें। 5:30 बजे तक ये चीज होगी, इसके बाद प्राणायाम शुरू होगा। 2 प्राणायाम होंगे, नाड़ी शोधन और प्राण संचार। आपको ऑडियो के माध्यम से हमने कोशिश की है समझाने की, आप टेक्स्ट में भी पढ़ सकते हैं और डॉक्टर साहब के निर्देश होंगे, उन्हें ध्यान से सुन लें। 1 मिनट का निर्देश होता है, पहले आप ध्यान से सुने, फिर अगर किसी और काम में लगे हैं तो वो काम कर लें, भले वो काम बाद में करें, पर कोशिश यही करें कि सुनने वाला काम ध्यान से हो। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का आपको वीडियो भी भेजा है, तो वो आप ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। 5 चरण है उसके, 5 चीजें बताई हुई है, सांस लेना, छोड़ना, रुकना, है ना, ध्यान करना, सोचना, विचार करना और कैसे वो प्राणायाम मुद्रा लगाना, ये सब बता दिया गया है। इसके बाद प्राण संचार प्राणायाम भी बहुत ही सुंदर है, ये भी जीजी के निर्देश में मिलेगा। जब ये सब हो जाएगा 6 बज जाएंगे, 6 से 6:30 5 कोश का जागरण का ध्यान है, पंचकोश जागरण। हम हमारे 5 कोशों को जागृत करेंगे, तो उसमें गुरुदेव के सारे निर्देश रहेंगे, उसे ध्यान से सुनना है और वैसा करते चलना है। तो एक ये हो जाएगा, 6:30 बजेंगी। 6:30 बजने के बाद आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा अलग एक्टिविटीज, ये रहेंगी अखंड दीप का दर्शन। ये जैसा मैंने कल भी बताया कि हम लोग शांति कुंज में होते हैं तो बाहर निकलते हैं कमरे से और शांति कुंज घूमते हैं, लेकिन अब आप अपने कमरे में, कुटी में प्रवेश करेंगे आज रात में, उसके बाद आप बाहर बहुत कम निकलेंगे, सिर्फ भोजन के लिए, टॉयलेट के लिए, इसके लिए आप निकल सकते हैं, लेकिन अब अखंड दीप दर्शन करने के लिए तो नहीं निकलेंगे। उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आपको उसका ध्यान करना है। हमारा 2 मिनट का 3 मिनट का ऑडियो बजेगा जो उसके महत्व को बताएगा। इसके बाद शांति कुंज गुरुकुल है, पावन एक गीत बचेगा, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, उसके साथ रमण करिएगा, सोचिएगा, विचारिएगा कि कहाँ कहाँ इसमें जिक्र आ रहा है। फिर 7 बजने में 10 मिनट कम रहेगा, मैं इसलिए टाइमिंग आप लोगों को बताते जा रही हूँ ताकि आप तैयारी वैसी करके रखें। तो 7 बजने में 10 मिनट कम रहेगा, उस समय यज्ञ का जो ऑडियो है शांति कुंज का वो बजेगा। तो ये टाइम टेबल में नहीं दिया हुआ है कि 6:50 यानी 7 बजने में 10 मिनट कम पर आपको हवन करना है, 6:50 पे यज्ञ करना है। यज्ञ की तैयारी आपकी जैसी हो आप तैयारी करके रखें, उसमें आवाहन है, उसमें अज्ञाहुति है और संविधा दानम है, जितने भी अपने होते हैं, बस आवाहन 2 मिनट का ही है, केवल गुरु और माँ गायत्री का, सर्वदेव आवाहन नहीं है, केवल इतना सा ही है और सर्वदेव नमस्कार है, बहुत ज्यादा पंचोपचार, षोडशोपचार इत्यादि का क्रम नहीं है, सिर्फ 1/2 घंटे का यज्ञ है, 1 पारी का, है ना। तो वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद यज्ञ से संबंधित एक गीत बजेगा, उसको आप सुनेंगे तब आप रिलैक्स हो सकते हैं, प्रज्ञा पेय ले सकते हैं, फलहार कर सकते हैं। उसके बाद 8 बजे आपकी अगली साधनाएं शुरू होंगी, तो उसमें प्राणायाम रहेगा, सूर्य वेधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम, फिर गायत्री मंत्र का जप रहेगा। 45 मिनट हम लोग परम पूज्य गुरुदेव के स्वर के साथ जप करेंगे, जप के महत्व को भी श्रद्धेय डॉक्टर साहब बताएंगे। जप के बाद नादयोग, नादयोग ये जो शाम के 6 बजे शांति कुंज में बजता वो वाला नहीं, थोड़ा अलग है बांसुरी का ही, इसमें श्रद्धेय बताते हैं कि किस तरीके से ये अभ्यास हम करते हैं ताकि अंदर का नाद सुन सके, जो भी बाबूजी बता रहे थे कि हम अपने अंदर की आवाज सुन सके, है ना, तो उसके बारे में ये कैसे हम प्रयास करें, तो पहले बाहर के नाद को सुनते सुनते हम धीरे धीरे अंदर जाते हैं और ओंकार ध्यान होगा। तो ये सारा होते होते 9:30 बज जाएगा, 9:15 का 9:15 से 9:30 बजे बीच में थोड़ा सा आपको हल्की सी झपकी जैसी आ जाती है, निद्रा जैसी आ जाती है, तो आप थोड़ा रिलैक्स हो लेंगे। 15 मिनट 9:15 के बाद जैसे ओंकार खत्म होता है, हल्का म्यूजिक बजेगा, आप टॉयलेट वगैरह जाकर के फ्रेश होकर के फिर से बैठ सकेंगे। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार समझ में नहीं आता कि कब टॉयलेट जाए, पता चला आपकी एक्टिविटी चल रही है आप उसमें ही चल दिए, तो नहीं। 9:30 से 9:15 के बीच में हल्का म्यूजिक बजेगा, अगर म्यूजिक नहीं है तो साइलेंस होगा, जो भी होगा आप समझ जाइएगा कि ओंकार खत्म हो गया 9:15 पर और अब अमृतवाणी आएगी। तो 9:30 बजे ठीक अमृतवाणी बजेगी, तो ओंकार ध्यान और अमृतवाणी के बीच में आपको एक ब्रेक मिल जाएगा, आप टॉयलेट जाएंगे, फ्रेश होके आ जाएंगे, अमृतवाणी और आत्म समीक्षा चलेगी। अमृतवाणी 20-25 मिनट की होती है, लेकिन 45 मिनट का समय आपको इसलिए दिया गया है कि इसमें आपको नोट्स बनाने हैं, आत्म समीक्षा करनी है, चिंतन करना है कि मैं कहां पर हूं इसमें जो गुरुदेव हमें समझा रहे हैं। तो ये अमृतवाणी में आत्म समीक्षा आत्मचिंतन चलेगा, ये नहीं कि इस समय हम कुछ नहीं कर रहे, इसमें करना है, चिंतन करना है, नोट्स बनाने हैं और अपने आप को इसमें रखना, यही स्वाध्याय है। तो ये हो जाएगा 10:15 बज जाएंगे, फिर गीत बजेंगे, आपको एक रिलैक्स छुट्टी जैसा, एक ब्रेक जैसा मिलेगा जिसमें आप भोजन कर लें, थोड़ा आराम कर लें और मैं क्या हूं का स्वाध्याय करें, पढ़ाई करेंगे इसमें। और हम हो सका तो ऑडियो बुक अगर हमें मिल जाएगी, अभी मिली नहीं है, हम उसको बजा देंगे तो आप सुन भी सकेंगे। ऑडियो बहुत से लोगों को देखने में, पढ़ने में, मोबाइल वगैरह में दिक्कत होती, तो सुन भी सकेंगे, तो ये व्यवस्था करेंगे। इसके बाद जो ब्रेक आपका 1 बजे तक खत्म हो जाएगा, 1 बजे से फिर साधनाएं शुरू होंगी, तो उसमें भ्रामरी प्राणायाम है। आपको बीच बीच में निर्देश दे दिया जाएगा कि अब आप 1 बजे कनेक्ट करिएगा, और नहीं निर्देश तो आप समझ जाइएगा कि अब तो कुछ इसमें होना नहीं है, ठीक 1 बजे होना है, वैसे बताया जाता है। और आपको व्हाट्सएप पर एक मैसेज भी मिल जाए, नहीं तो आपको अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो आप समझ जाएगा कि अभी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और हम 1 बजे कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से चलती रहेंगी साधनाएं, 1:00 से 3:15 बजे तक चलेंगी। इसमें क्या क्या हो जाएगा, भ्रामरी प्राणायाम होगा, सोहम साधना, सोहम साधना में सांसों को देखना है, पूरे निर्देश श्रद्धेय डॉक्टर साहब के रहेंगे, उसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सांस को लेते समय ब्रह्मांड से सांस आ रही है, यानी वह महान तत्व हमारे अंदर आ रहा है, और तुच्छ प्राण हमारा बाहर निकला, अहम बाहर निकल रहा है, स अहम, तो स को सो बोलते हैं, संधि होकर के सो हो जाता है, तो सो हम, जो हम है वह अहंकार तुच्छ निकल गया, बाहर दूर हो जाएगा। तो ये मैं क्या हूं की साधना है, सो हम, हमारा तुच्छ पना जो है बाहर निकलता है और वो महान तत्व जो अंदर आता है। इसके बाद 1:30 बजे ज्योति अवधारणा है, ज्योति अवधारणा में दीपक जलाते हैं, त्राटक जैसा भी करते हैं बहुत से लोग, अगर व्यवस्था हो जाए तो दीपक जला के रखना है आप लोगों को सबको, जैसा कि हम लोगों ने बताया, पूजा स्थली आपकी अपने बना के रखनी है, दीपक को कोशिश करें थोड़ा ऊंचा रहे ताकि आपकी आंख के सामने आ जाए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, है ना। इसमें मुख्य बात है एक्टिविटी से ज्यादा, कर्मकांड से ज्यादा मन की तरफ ध्यान देना है, कि इसमें माताजी बोलती हैं कि जिस तरह एक दीपक, दीपक की ज्योति से एकाकार हो जाता है और अपने तुच्छपने को समाप्त कर देता है, पूरी तरीके से उसमें विसर्जन और विलय हो जाता है, जैसे कि हमने अपने जीवन को किया वैसा भाव हम लोगों को बनाना है। सारा यहाँ पर भाव क्षेत्र का काम है, आप विशेष ध्यान दीजिएगा, कर्म कांडों को एक साइड में रखना है, कर्म कांड से ऊपर की कक्षा में हम लोगों को प्रवेश करना है। तो ज्योति अवतरण साधना का भी लेख है, वो आप लोगों को दे देंगे, उसको आप पढ़िएगा। और फिर अगली साधना होती है आत्मदेव दर्पण साधना, आत्म समीक्षा, ये भी बहुत सुंदर, बहुत से लोगों को नहीं बनती, हमसे भी नहीं बनती थी, इस पर लेख पढ़ा पूरा, ये विज्ञान में कोश की साधना है। अपने स्थूल शरीर को दृष्टा भाव से देखना है, अपने शरीर को आईने में देखना रहता है, आईना आपको अपने शरीर के आकार का लेना है, अगर आपके घर में है तो ठीक है, नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, उस समय मैं क्या हूं कि किताब पढ़िए या आंख बंद करके बैठ जाइए और अपने आप को दृष्टा भाव से बाहर निकल जाइए अपने शरीर से और देखिए कि मैं अपने जीवन में कर क्या रहा हूं, एक स्टॉप साइन लगाइए, सोचिए, विचार करिए कि ये कर क्या रहा है, इसकी जीवन की दिशा धारा किस तरफ जा रही है, ये सारे आपको चिंतन मनन करना है अपने बारे में। तो ये आत्मदेव दर्पण साधना, आत्म समीक्षा करनी है, इसके पश्चात फिर आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम और फिर अमृत वर्षा का ध्यान रहेगा। तो ये 3:15, 1 बजे से 3:15 आपको मोटा मोटा टाइम टेबल हम बता देंगे, भेज देंगे, जिससे आपको ये पता रहेगा कि कनेक्ट कितनी देर तक करे रहना। जैसे सवेरे 4 बजे शुरू होगा तो 10:15 बजे तक चलेगा, दूसरा आपका चालू होगा तो 1 बजे चालू होगा, 3:15 तक चलेगा, तीसरा आपका 5 बजे चालू होगा तो नादयोग 6:15 बजे तक चलेगा, और चौथा आपका 7 बजे चालू होगा तो रात के 9 बजे तक चलेगा। तो ये ऐसे 4 बार आपको कनेक्ट करना है आपके मोबाइल पर, और आपको पूरे समय ये आवाज आएगी जैसे अभी आ रही है। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि करना क्या है, खुद प्ले करना है, नहीं आपको खुद नहीं प्ले करना, आपको सिर्फ कनेक्ट करना है, यहाँ से ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। तो आपके अमृत वर्षा ध्यान होने के बाद ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने पे आप लोग प्रज्ञा पे स्वच्छता साफ सफाई करें, कमरे की अपने श्रमदान कर लें, ये नहीं कि बाहर जाकर के पूरे घर की साफ सफाई करने लग गए, चलो खाना बनाने लग जाएं, बातें बातें करने लग जाएं, बातें तो करना ही नहीं है, आंखों से भी नहीं करना है, चैट पर भी नहीं करना है, अपना चिंतन मनन करना है। एक दिन की छुट्टी ली है आपने तो आप अपने कमरे में अपने एरिया में छुट्टी लेकर के भले लेटे रहे, लेटे लेटे सोचें, अपने उस क्षेत्र को साफ सुथरा करें पर विचार करें, ये रहेगा। स्वाध्याय करें, मैं क्या हूं पुस्तक जितनी पढ़ सके उतनी पढ़ लें, फिर दोबारा से नाड़ी शोधन प्राणायाम होगा। किसी ने पिछली बार पूछा था कि 2-2 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम क्यों, नाड़ी को शोधित करना यानी साफ करना, इससे बहुत हेल्प मिलती है। हमारी नाड़ियां ही मामला गड़बड़ करती हैं, वहां पे हमारे संस्कारों का भी हिसाब किताब चलता रहता है, तो उनकी सफाई अगर हो जाती है तो हमें साधना मार्ग में काफी मदद मिलती है। तो इसलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम दोबारा, और हमेशा जब भी हम जप कर रहे हो तो नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लें, उसके बाद जप में मन लगता है। कई बार शिकायत आती है हम सभी लोगों को अपने से कि हमारा जप में मन नहीं लग पाता, तो पहले प्राणायाम करें। प्राणमय कोश जो है वो मन और अन्नमय कोश दोनों के बीच का, ये दोनों को बांधता है, तो शरीर भी सधता है मन भी सधता है प्राणायाम कर लेने से। तो इसलिए प्राणायाम करना चाहिए और खासकर नाड़ी शोधन प्राणायाम। फिर गुरुदेव के साथ जप रहेगा, ये 1/2 घंटे का है जप चलेगा। फिर खेचरी मुद्रा, किसी ने पूछा था कि खेचरी मुद्रा हम पूरे टाइम कर रहे, पूरे टाइम नहीं करना है, ये प्रत्याहार की साधना है। प्रत्याहार मतलब कि हमारी जो इंद्रियाएं बहिर्मुखी हैं, खाने पीने इसमें संसार में जाती हैं, बाहर की तरफ है, इन्हें अंदर की तरफ मोड़ना, तो जीभ उसका प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए हम जीभ को पीछे कर देते हैं। ये मैंने कल भी स्पष्ट किया था लेकिन बहुत से नए परिजन है इसलिए पुनः ये सारा रिवाइज कर रही हूँ। तो ये ध्यान रखेंगे खेचरी मुद्रा का भाव क्या है, पीछे कर लेंगे, इंद्रियों को अंदर की तरफ मोड़ना है, नादयोग होगा, फिर ब्रेक होगा, भोजन करना है, टहलना है, टहलना अपने कमरे में या छत में चले जाएं, थोड़ा सा आंगन वांगन हो तो वहां टहल लें, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर सोसाइटी में ना निकल जाएं, ना लॉकडाउन का सिस्टम चल रहा है तो थोड़ा सा शरीर हल्का फुल्का हो जाए, वज्रासन में बैठ जाए, और फिर 7 बजे से हमारी अगली साधनाएं शुरू हो जाएंगी, सहज लयबद्ध सांस प्रश्वास रहेगी, और आखिरी 7:15 बजे परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी रहेगी, उसको ध्यान से सुनेंगे। अमृतवाणी के नोट्स जरूर बनाएं, नोट्स बनाने से हमें नींद नहीं आएगी, नहीं तो नींद आने लगती है और हम आधा सुनते आधा नहीं सुनते, इसलिए लिखने की बहुत कोशिश करें, आदत डालें, फिर उसी में आत्म समीक्षा करना है, देखना है कि हम कहाँ पर हैं, अपने बारे में सोचना है, और फिर निद्रा की गोद में तत्वबोध की साधना होगी। शायद डॉक्टर साहब बताएंगे कि क्या क्या किया, आपने पूरा समीक्षा करें, चिंतन करें, और फिर हम सो जाएंगे। अगर आपका डिस्कनेक्ट आप कर सकते हैं तो आप कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, अपने आप हो जाता है थोड़ी देर में तो ठीक है, नहीं तो हम कर देंगे। तो ऐसी साधना चलेगी, रात हो जाएगी। फिर सही कई लोगों का प्रश्न आता था सवेरे क्या होगा, तो सवेरे फिर वैसे ही उठना है जैसे कल उठेंगे, तो रविवार की सवेरे भी 4:45 बजे उठ करके वही दिनचर्या चलेगी। कितने बजे तक, 6:30 बजे तक ध्यान वगैरह, फिर हम लोग यज्ञ करेंगे, यज्ञ उस दिन थोड़ा जल्दी कर लेंगे, जल्दी तो नहीं करेंगे उतनी ही देर होती है, पर थोड़ा सा जप हम कम करते हैं, जप पूरा 45 मिनट का ना हो करके 10-15 मिनट का जप है, और फिर अमृतवाणी है, और जो जप है उस जप के साथ हमको परम पूज्य गुरुदेव के साथ अपने मौन व्रत को पूरा करना है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं, धीरे धीरे बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, और आपका व्रत जो है वो रविवार की सुबह पूरा हो जाएगा। बहुत से भाइयों का कहना है कि ये दूसरे दिन क्यों करा रहे हैं भाई, एक दिन की साधना है तो एक दिन की साधना है, लेकिन आपकी पूरी भी तो करानी होगी, उसको खत्म भी तो करना होगा। रात को सुला देंगे और एक टाटा बाय बाय तो नहीं कर सकते ना, अगले अच्छे से सही तरीके से इसका समापन होता है। अगर हम इसको दो दिन की कहेंगे तो दूसरा दिन तो कुछ है ही नहीं, दूसरे दिन तो हम पूरा कर देते हैं, तो फिर ये तर्क और कुतर्क की बात नहीं है। बात यह है कि साधना पूरी एक दिन परमपूज गुरुदेव के मार्गदर्शन में यहाँ से ब्रॉडकास्ट होगी और दूसरे दिन आपकी पूरी हो जाएगी। बहुत से परिजनों के ऐसे प्रश्न आ रहे थे, कहीं कहीं जिज्ञासा थी, कहीं कहीं संशय था कि ये शांति कुंज से हो रही है या नहीं हो रही। तभी आपने उपाध्याय बाबूजी का भी प्रवचन सुन लिया, उद्बोधन सुन लिया, जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है, मार्गदर्शन दिया है। इसके बाद हम खुद यहाँ पर देव संस्कृत विश्वविद्यालय से आप सभी को निर्देश दे रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, और आपका अपना अनुशासन है, आपका अपना संरक्षण परम पूज्य गुरुदेव करेंगे अगर आप अनुशासन को मानेंगे। हम अगर अनुशासन मानते हैं तो संरक्षण मिलता है। तो इन्हीं भावों के साथ संशय रहित होकर के पूर्ण समर्पण के साथ अनुशासन को मानते हुए आप सभी से निवेदन है कि अब संकल्प के क्रम में आगे बढ़े। संकल्प के महत्व को समझेंगे, फिर हम मंत्रों के माध्यम से आपका संकल्प कराएंगे। आइए संकल्प के महत्व को समझें कि वास्तव में संकल्प है क्या।
संकल्प और आत्मबल एक ही तथ्य के दो पक्ष हैं। सुखद कल्पनाओं का आनंद सभी लेते हैं, पर उन्हें पूर्ण करने को सफलता का गौरव प्राप्त कर सकना किसी किसी के लिए ही संभव होता है। कल्पना की चिड़िया इस उन्मुक्त आकाश में कितनी ही ऊंची उड़ानें उड़ सकती हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं, पर एक छोटा सा सुनियोजित घोंसला तक बनाकर खड़ा करना हो तो बया जैसी तत्परता और तन्मयता का परिचय देना पड़ता है। प्रगति की अभीष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए जिस सामर्थ्य की सर्वप्रथम आवश्यकता पड़ती है वो है संकल्प शक्ति। किसी कार्य के पक्ष विपक्ष पर भलीभांति मंथन करने के उपरांत जो निष्कर्ष निकलता है और अपनी क्षमता का अनुमान लगाकर जिसे करने का फैसला किया जाता है उसे निश्चय कहते हैं। निश्चय को कार्यान्वित करने के लिए साहस चाहिए और साथ ही यथार्थतावादी विवेक भी। निश्चय को साहस का योगदान मिलने से जो दृढ़ता उत्पन्न होती है उसे संकल्प कहते हैं। संकल्प की शक्ति असीम है, उसके द्वारा असंभव को संभव बना सकना शक्य न हो सके तो भी इतना निश्चित है कि कठिन लगने वाले कार्य सरल हो जाते हैं। ऊंचा उठने और आगे बढ़ने का श्रेय प्राप्त करने वालों में से प्रायः सभी ने संकल्प शक्ति के सहारे ही अति महत्वपूर्ण श्रेय संपादन किए हैं। अखंड ज्योति, जून 1978, पृष्ठ 1।
संकल्प की शक्ति अपार है। आइए हम सभी संकल्प को समझें, आत्मसात करें। रक्षा सूत्र आप लोगों के पास हो तो बांध लें, अगर नहीं है तो आप अपने बाएं हाथ को की जो कलाई है उसको दाएं हाथ से पकड़ लें, बहने बाएं हाथ को और भाई लोग सीधे राइट हैंड को पकड़ लें। ये भाव करें कि हम व्रत ने संकल्प ले रहे हैं। संकल्प लेते समय हम अपनी इच्छाओं को समर्पित कर देते हैं, और जब हम इच्छा को समर्पित करते हैं तो हम दक्ष होते हैं, दक्ष बनते हैं, और यही दक्षता हमें हमारे अंदर श्रद्धा विकसित करती है, और श्रद्धा के माध्यम से ही हम सत्य तक पहुंच पाते हैं। ओम व्रतेन दीक्षाम आप्नोति, दीक्षाम आप्नोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आप्नोति, श्रद्धया सत्यम आप्यते। आइए हम सभी सत्य तक पहुंच सके इन भावों को लेते हुए अब संकल्प हम बोलेंगे। आप लोग संकल्प को समझ लें, समझना सबसे महत्वपूर्ण है कर्मकांड से ज्यादा। बार बार इस बात पर हम जोर दे रहे हैं, आप लोग इसको समझेंगे। लकीर के फकीर बिल्कुल भी नहीं होना है, विवेक को महत्व देना है, परंपराओं को भी मानना है लेकिन उसकी तुलना में विवेक। तो आइए समझते चलते हैं। ओम विष्णुर्विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणोदिति परार्धे श्री श्वेतवाराकल्पे वैवस्वत मन्वंतरे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे, जो लोग वो यूके में हैं तो वो अपना यूके का ध्यान कर लेंगे, वहां का वहां पर ले रहे हैं संकल्प तो वहां के क्षेत्र का ध्यान करेंगे। हम जो लोग भारत में हैं वो आर्यावर्तक देश अंतर्गते अपने अपने क्षेत्र का ध्यान कर लें। और अब समय, देखिए दो चीज होती है संकल्प लेने में, एक स्थान और एक समय, कि किस समय हम ले रहे हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने ये संकल्प इस समय और इस स्थान पर लिया था। दो से ही हमारी आइडेंटिटी बनती है, हमारा व्यक्तित्व जहां हम व्यक्त हुए, तो एक स्थान और एक समय इसमें हम व्यक्त हो रहे हैं। तो 2077 विक्रमादे संवत्सर है, मासा नाम उत्तम मासे, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, वैसे तो ज्येष्ठ चालू हो गया सभी जगह, ज्येष्ठ मास है। कृष्ण पक्षे आज तिथि है अष्टमी तिथौ, और शुक्रवासरे अपने अपने गोत्र का नाम बोलने, और नहीं पता हो तो परम पूज्य गुरुदेव के हम सब शिष्य हैं तो भारद्वाज गोत्र उत्पन्न, अब अपना अपना नाम बोलेंगे। पहले आप लोग बोल लें, आपने संकल्प लिख के रखा होगा, सभी सारथियों से निवेदन है कि वे लाइन को ऑल पार्टिसिपेंट्स में कन्वर्ट कर दें, और आप लोग बोले वो जब कन्वर्ट कर देंगे तो आप एंटर करेंगे। नामा हम सत प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्काराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम् कुटी प्रवेश अंतः ऊर्जा जागरण मौन साधना सत्र
कर्म
संपादन
अर्थम
संकल्पम अहम करिष्ये। तो सत प्रवृत्तियों के संवर्धन मतलब अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए, बुराइयों को हटाने के लिए, लोक के कल्याण के लिए, आत्म के कल्याण के लिए, वातावरण के परिष्कार के लिए, उज्जवल भविष्य की कामना के लिए हम सब प्रबल पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। और इसलिए हम सभी लोग सामूहिक रूप से पूरे देश में इस समय 600 के करीब परिजन हैं जो एक साथ कुटी प्रवेश करने जा रहे हैं और मौन साधना कर रहे हैं। एक प्रचंड ऊर्जा पूरे भारत में प्रवाहित हो, शांति कुंज की दिव्य धारा पूरे देश में बहे और सभी के अंदर सत प्रवृत्तियां बढ़े। इन्हीं भावों के साथ आइए हम सभी लोग शांति की प्रार्थना करते हुए, आज रात 9 बजे आप सभी लोग प्रार्थना के लिए फिर से कनेक्ट करेंगे, कुटी प्रवेश कर लेंगे, अपने कमरे की पूरी तैयारी नहीं की हो तो कर लें, बातचीत नहीं करेंगे बिल्कुल भी, अब मौन आपका शुरू हो जाता है। ओम सहनावतु सहनोभुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम देव शांति अंतरिक्ष एवं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व ओम शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर भवतु।